तो हम किस प्रकार अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम वैश्य हैं और गो रक्षा हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। और वर्षा को नियंत्रित कौन करते हैं? वर्षा को नियंत्रित करते हैं इंद्रदेव, वो देवता हैं जो वर्षा अपनी स्वेच्छा से हमारे ऊपर प्रदान करते हैं। तो सारा व्रज हरा भरा इसलिए है क्योंकि इंद्रदेव ने हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखी है। तो गोपाल ने सोचा कि किस प्रकार मैं इन ब्रजवासियों का इंद्रदेव पर से श्रद्धा को उठाऊं, और दूसरे इंद्रदेव जो कि स्वर्ग लोक के स्वामी हैं और अपने पद से आसक्त होकर वो काफी अपने ही पद के प्रति आसक्त हो गए हैं और सोच रहे हैं कि मैं ही नियंत्रक हूं, उनके दंभ को मैं किस तरह चीर कर सकूं। ऐसा सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन लीला रचाने का निश्चय किया। तो कृष्ण कहने लगे कि नंद महाराज, देखिए इंद्रदेव को पूजने की क्या आवश्यकता है, हम तो अलग अलग प्रकार से कर्मों में पूरी तरह लगे हुए हैं, वर्णाश्रम के अनुसार हम अपने सारे कर्म कर रहे हैं, और जो व्यक्ति अपने कर्मों को पूरा करता है तो उस व्यक्ति को किसी प्रकार की चिंता नहीं, क्योंकि कर्म ही तो पूजा है। और यदि हम कर्म करें और अपने कर्म में अपना पूरा मन लगाएं तो भगवान भी विवश हो जाते हैं हमें अपने कर्मों के फल को देने के लिए। इस सिद्धांत को कहते हैं कर्म मीमांसा। गोपाल भगवान श्री कृष्ण ऐसा तथ्य रख रहे थे क्यों? क्या वास्तव में वो इस पर विश्वास रखते थे? कृष्ण कह रहे थे किसी देवता को पूजा करने की क्या आवश्यकता, आप गोरक्षा करो, अपने कर्मों के प्रति पूर्ण रूप से आसक्त रहो तो इंद्रदेव अपने आप वर्षा देने पर वशीभूत हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे, इसमें हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो आम तौर पर हम देखते हैं कि समाज में ये धारणा है वर्क इज वर्शिप, बस कर्म करते जाओ कर्म करते जाओ कर्म करते जाओ, मन लगाकर कर्म करते रहोगे तो फल तो आने ही है। तो वास्तव में यदि कर्म ही पूजा है तो फैक्ट्री हो गया मंदिर, यदि कर्म ही पूजा है तो फैक्ट्री में जो मशीन है वो हो गए अर्च विग्रह, यदि कर्म ही पूजा है तो क्रूड ऑयल जो कंप्रेसर में जाता है वो हो गया चरणामृत, तो फिर मंदिरों में जाने क्या आवश्यकता, फैक्ट्रियों में ही पूजा करते रहिए। लेकिन नहीं, यदि पेट्रोल न हो तो कितने फैक्ट्री चल सकते हैं, यदि बिजली न हो तो कितने फैक्ट्री चल सकते हैं, ये सारे केवल प्रकृति के देन पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं। तो कोई ये नहीं सोचता कि इनके पीछे नियंत्रक कौन है। तो ये कहना पूर्ण रूप से गलत है कि बस कर्म करते जाओ कर्म करते जाओ, भगवान भगवान के विषय में चर्चाएं करने की क्या आवश्यकता, क्यों व्यर्थ समय गंवाते हो इतने समय में, और आप कमा सकते हो कर्म कर सकते हो। तो एक बार एक बहुत बड़े उद्योगपति थे अमेरिका में जिनका नाम था हेनरी फोर्ड, आपने नाम सुना होगा। और ये हेनरी फोर्ड एक दिन अपने फार्म हाउस पर गए थे रांच पर, और वहां उन्होंने देखा कि घूमते घूमते उनके सामने एक आदिवासी, अमेरिका में रेड इंडियन होते हैं, रेड इंडियन ट्राइब्स, तो आदिवासी आराम से लेटा हुआ है और धूप सेक रहा है। तो हेनरी फोर्ड ने कहा, क्यों भाई तुम्हारे पास दूसरा कोई काम नहीं है क्या? तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं बस आनंद आ रहा है, धूप सेक रहा हूं बस, और क्या चिंता है। तो हेनरी फोर्ड कहने लगे, देखो मुझे देखो, मुझसे कुछ सीखो, मैं दिन में केवल 4 घंटा सोता हूं, बाकी सारे 20 घंटे मैं पूरी तरह से काम करता रहता हूँ, काम करता रहता हूँ, दूसरा कुछ नहीं करता। तो आदिवासी ने पूछा, क्यों करते हो भाई इतना काम, किसने सजा दी है आपको इस तरह? उसका, नहीं मैंने इतना काम किया है कि मेरी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं और मैं इतने बड़े बड़े कार बनाता हूं और ऐसे कार बनाए हैं कि पूरी अमेरिका में पहली बार हमने इन कारों को सबके सामने प्रस्तुत किया है। तो उस आदिवासी ने पूछा, तो फिर आगे क्या विचार है? बोला, आगे हमने सोचा है कि इन कारों को पूरे विश्व भर में हम भेजेंगे, विश्व के कोने कोने में प्रत्येक देश में हम इन्हें बेचेंगे। बोला, अच्छा फिर उसके पश्चात क्या करोगे? उसके पश्चात मेरी इच्छा है कि मेरी कंपनी में जितने भी लोग काम करते हैं सबको एक एक कार में दूंगा। अच्छा बड़ी अच्छी बात है, और आगे क्या सोचा है? उसके बाद मैं सोचता हूं कि मैं अपने पुत्रों को अच्छी प्रकार से ट्रेनिंग दूंगा और उसके पश्चात वो इन कारों को अच्छी तरह से बेचेंगे। आदिवासी ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद मैं सोच रहा हूं कि जब मेरा धंधा इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए कि कोई दूसरा व्यक्ति पास भी नहीं आ सकता, तब मैं सब कुछ छोड़कर इस रैंच पे आऊंगा। अच्छा उसके बाद क्या करोगे? फिर बस रैंच में घूमते घूमते घामते घामते कुछ नहीं करूंगा, बस यहां बैठूंगा और सूर्य के नीचे धूप सेकूंगा। तो इनका, वही तो मैं कर रहा हूं अभी, जो तुम इतने वर्षों के बाद करने वाले हो वही काम मैं कर रहा हूं, तुम मुझे क्यों डांटते हो? तो 50 साल क्यों केवल काम में ही व्यस्त गंवा दोगे, तो भगवान के लिए समय कब निकालोगे? लोग कहते हैं, अभी तो हम जवान हैं, शरीर तो बहुत तगड़ा है, जब बूढ़े हो जाएंगे, जब शरीर किसी काम का नहीं रहेगा, तब भगवान को अर्पित कर देंगे। एक बहुत बड़े संत थे, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान मुझे सारी काम वासनाओं से मुक्त कर दो भगवान। और फिर वो रुके और फिर बोले, अभी नहीं, बुढ़ापे में, इतनी जल्दी नहीं, अभी तो मुझे पूर्ण रूप से इंद्र तृप्ति करने दीजिए। तो कर्म ही पूजा है, ये बहुत बड़ा भ्रांत लोगों के मन में है। तो कृष्ण भगवान इस तरह नंद महाराज को कह रहे थे कि वास्तव में हम अपना कर्म कर रहे हैं तो इंद्र देव तो विवश हैं, वर्षा तो होनी ही है, चिंता क्यों करते हो? तो नंद महाराज ने कहा, तो मैं क्या करूं? तो कृष्ण ने कहा, देखिए हम ग्वाल बाल हैं और गायों के ऊपर निर्भर हैं, तो इन सारे गायों को जल, खाने के लिए घास और बाकी सब कुछ कहां पर प्राप्त होता है? ये सभी गोवर्धन पर्वत पर प्राप्त होता है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जितने भी आपने भोग की सामग्री बनाई है, ये सारे व्यंजन आप गोवर्धन को चढ़ा दो। एक बार गोवर्धन को आप इन सारे वस्तुओं को, व्यंजनों को चढ़ा दोगे, तो गोवर्धन एक बार इन्हें स्वीकार करेंगे तो अपने आप हमारे जीवन में सफलता होगी और दूसरा कुछ नहीं हो सकता। तो कहा जाता है कि गोवर्धन यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद हंतायम अद्रि अबला हरिदास वर्यो। गोवर्धन के विषय में बताया गया है कि हंत आयम अद्रि, गोवर्धन पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो कि हरिदास वर्यो भगवान श्री कृष्ण के सभी सेवकों में सर्वश्रेष्ठ है। हंतायम अद्रि अबला हरिदास वर्यो, ये सर्वश्रेष्ठ भक्त क्यों है, सर्वश्रेष्ठ सेवक क्यों है? यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, क्योंकि भगवान श्री बलराम जी और गोपाल इन दोनों के चरण नित्य गोवर्धन पर स्पर्श होते रहते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम के चरण कमल उनके शरीर पर पड़ता है तो गोवर्धन बहुत आनंद में आ जाते हैं। जो आनंद की अनुभूति उन्हें होती है उसकी कोई सीमा नहीं। तो इसलिए गोवर्धन पर्वत को महान समझा जाता है। और साथ साथ गोवर्धन पर्वत के अन्य गुण क्या हैं? मानम तनोति गोगण सह गोप वृक्षय। और साथ साथ जितने ग्वाल बाल हैं, जितने गाय हैं, और राम और कृष्ण हैं, मानम तनोति गोवर्धन पर्वत इन सभी को मान सम्मान देते हैं। मान सम्मान कैसे देते हैं? पानी असूय वसकंदर कंद मूलय। गोवर्धन पर्वत पर ये सभी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। क्या? पानी अर्थात सुंदर, बहुत ही मीठा जल। न केवल जल, अलग अलग प्रकार के फलों का रस वो भी गोवर्धन पर्वत पर प्राप्त होता है। पानी सुयवस कोमल हरे घास, जिसे खाकर सारे गाय संतुष्ट और तृप्त हो जाते हैं। और जिन घास पर सारे ग्वाल बाल लेटते हैं उस पर लुढ़कते हैं और आनंद करते हैं। पानी सुयवस कंदर कंद मूलय, और सुंदर फल प्राप्त होते हैं। सुंदर कंदर अर्थात फलों के अंदर जो गुठलियां होती हैं, उन गुठलियों से जो अलग अलग वृक्ष उत्पन्न होते हैं, उन वृक्षों के मूल या रूट उनको भी खाया जाता है। और इतने सुंदर पत्तों वाले वृक्ष जो चारों तरफ छांव प्रदान करते हैं, और जिन कुंजों में राधा रानी, कृष्ण भगवान और सारी गोपियां सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। इसीलिए हंतायम अद्रि अबला हरिदास वर्यो। हरिदास अर्थात भगवान श्री कृष्ण का दास, वर्यो अर्थात सभी दासों में सर्वश्रेष्ठ। भगवान कृष्ण के सभी दासों में गोवर्धन पर्वत को सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है। तो इसीलिए गोवर्धन पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं है। कृष्ण भगवान प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके आप इंद्र देव को भोग मत लगाओ, गोवर्धन को लगाओ। तो इतने मीठी वाणी में कृष्ण उन्हें प्रचार करते हैं कि नंद महाराज के जीवन में उद्देश्य क्या है। समसिद्धिर हरितोषणम, जो करो केवल गोपाल की संतुष्टि के लिए। तो नंद महाराज उस वक्त पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं थे कि ऐसा क्यों करें, लेकिन क्योंकि गोपाल आग्रह कर रहे थे तो नंद महाराज ने कहा, हे गोपाल, क्योंकि आपकी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। चलो, जितना भी हमने बनाया है ये सभी हम गोवर्धन पर्वत को अर्पित करेंगे। बड़े बड़े कुंड बने थे खीर के, बड़े बड़े कुंड भर गए थे चावल के, इतना सारा दाल बना था, जितना कुछ मिठाइयां थी उन सभी को एकत्र कर गोवर्धन के सामने रखा गया। उस समय गोपाल ने अपने आप को गोवर्धन के रूप में विकसित किया, विस्तारित किया। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन का रूप धारण कर उस सारे भोग को स्वीकार किया। और जितना कुछ वहां पर उपस्थित था उसी क्षण दृष्टिगोचर हो गया। और सारे वृंदावन वासी सोच रहे थे, अरे इतना सब बनाया था भोग, इतने व्यंजन कहाँ गए? गोवर्धन ने उसे स्वीकार किया। बोले गिरिराज महाराज की। लेकिन उसी क्षण गोवर्धन ने निश्चय किया कि चलो हम इसे वापस लौटाते हैं। और जितना कुछ उन्होंने स्वीकार किया था फिर वापस ब्रजवासियों के समक्ष आ गया। ब्रजवासी बहुत संतुष्ट हुए और उसे स्वयं गोवर्धन का प्रसाद मानकर उन्होंने उसे स्वीकार किया। और उस समय कृष्ण भगवान ने उपस्थित सभी ब्रजवासियों को ये आदेश दिया कि देखिए, हर वर्ष आप इसी तरह गिरिराज महाराज के आनंद के लिए अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाइए और उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास कीजिए। केवल गोवर्धन की कृपा होगी तो अपने आप व्रज में किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों से आग्रह किया। सारे ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण की बात को मान ली, लेकिन एक व्यक्ति संतुष्ट नहीं थे और वो थे इंद्रदेव। इंद्रदेव ने सोचा कि हर वर्ष जो प्रथा यहां पर चलती है, केवल एक छोटे से बच्चे के कहने पर इस बार एक मिट्टी और पत्थर के पर्वत को खिला दिया, ये तो मेरा बड़ा अपमान हो गया। और इंद्रदेव कहने लगे, वाचालं बालिशं स्तब्धम् अज्ञम पंडितम मानिनम कृष्णम मर्त्यम उपाशुत्य गोपामे चक्रु अप्रियम। इंद्रदेव बड़े क्रोध के साथ कहने लगे, वाचालम बालिशम स्तब्धम, इन सारे ब्रजवासियों ने एक छोटे से बातूनी बालक के कहने पर, वाचालम अर्थात जो बहुत कुछ अनाप शनाप बकता है, बच्चे जब बोलते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं बुरा बोल रहे हैं कुछ कह नहीं सकते। तो इंद्रदेव कह रहे हैं कि एक छोटे से बालक की बातों को सुनकर बालिशम, जो कि केवल एक बालक है, पूरी तरह परिपक्व नहीं हुआ, और अज्ञम जो कि अज्ञानी है, और पंडित मानिनम, इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने नंद महाराज को सुनाई, अलग अलग कारण बताए कि इंद्रदेव की पूजा क्यों ना करो, अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानता है। कृष्णम मर्त्यम उपाशुत्य, ये कृष्ण कोई भगवान थोड़े ही है, ये कृष्ण तो मर्त्यम केवल एक साधारण देहधारी पुरुष है, केवल एक साधारण मनुष्य है। गोपा में चक्षु अप्रियम, और इन सारे ग्वाल बालों ने मिलकर मेरे विरोध में ऐसा कार्य किया। इस तरह इंद्रदेव बहुत क्रोधित हुए, कृष्ण के प्रति बुरा भला कहने लगे। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि वास्तव में इंद्रदेव ने जो ये शब्द कहे, कृष्ण की निंदा करने का प्रयास किया, वास्तव में ये कृष्ण की निंदा नहीं थी, वास्तव में इंद्रदेव कृष्ण की स्तुति कर रहे थे। वो कैसे? सरस्वती देवी की कृपा से श्रीधर स्वामी को सब कुछ ज्ञात था। तो कहते हैं, वास्तव में इंद्रदेव कह रहे थे, वाचालम वाचालम बालिशम स्तब्धम। बालिशम का अर्थ अपरिपक्व बच्चा नहीं, बालिशम का अर्थ है बच्चे के समान मासूम और शुद्ध कृष्ण। कितने शुद्ध हैं एक छोटे बालक के समान। स्तब्धम, स्तब्धम अर्थात जो बहुत बड़ा दाम्भिक हो, जिसके हृदय में मिथ्या अहंकार बहुत हो, जो किसी के सामने झुके नहीं, इस तरह आरोप लगा रहे थे इंद्रदेव। लेकिन श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इसका असली तात्पर्य है, भगवान श्री कृष्ण इतने महान हैं और इतने शक्तिशाली हैं कि किसी के सामने झुकने की उनको आवश्यकता ही नहीं पड़ती, सब उनके सामने झुकते हैं, इसीलिए वो कृष्ण की स्तुति कर रहे थे। और अज्ञम, अज्ञम का अर्थ जो इंद्रदेव कह रहे थे वो थे मूर्ख, लेकिन श्रीधर स्वामी कहते हैं ज्ञ अर्थात सारा ज्ञान, और अज्ञम अर्थात ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो भगवान कृष्ण को पता न हो। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, स्तुति कर रहे हैं। पंडित मानिनम, इंद्रदेव कह रहे थे कि गोपाल अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझता है लेकिन वास्तव में है बालक। लेकिन श्रीधर स्वामी कहते नहीं, कृष्ण इतने महान हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं कि बड़े बड़े पंडित भी उनको मानते हैं। पंडित मानिनम अर्थात बड़े बड़े पंडित भी आकर, बड़े भक्त भी उनके सामने झुकते हैं। मर्त्यम, कृष्णम मर्त्यम उपासित का अर्थ है कि भगवान कृष्ण का रूप सच्चिद आनंद विग्रह है, प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं है। इस तरह श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इंद्रदेव कृष्ण की स्तुति कर रहे थे। तो हुआ यूं कि इंद्रदेव ने निश्चय किया कि इस उद्दंड बालक को मैं एक सबक सिखाऊंगा, और ऐसा सोचकर इंद्रदेव ने अपने संवर्तक बादलों को आदेश दिया कि जाओ और पूरे वृंदावन धाम पर ऐसी मूसलाधार वर्षा करो कि कोई न बचे। इस तरह इंद्रदेव के आदेशों को सुनकर सारे संवर्तक बादल तैयार हुए। संवर्तक बादल इतनी भयंकर वर्षा करने लगे ब्रज के ऊपर कि जब वर्षा हो रही थी प्रतीत हो रहा था कि पानी स्तंभों के रूप में नीचे गिर रहा हो। छिटपुट वर्षा नहीं हो रही थी, स्तंभों के प्रमाण से इतना पानी गिर रहा था। और उनके पीछे पीछे वायु देवता उनकी मदद कर रहे थे जिससे बहुत भयंकर आंधी मच जाए। और पूरे वृंदावन धाम पर जब इस तरह अनावृष्टि होने लगी तो ब्रजवासी पूर्ण रूप से भ्रमित हो गए कि अब हम क्या करें। सारे गाय पानी में धीरे धीरे डूब रहे थे। पानी की शक्ति इतनी थी कि कोई अपने आप को बचा नहीं पा रहा था। कुछ ही क्षणों में वृंदावन की भूमि पर पानी का बहुत बड़ा बाढ़ आने लगा। सब कृष्ण के पास जाने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वेको दह्यमानानाम वर्गोऽसि संस्मृते। हे कृष्ण बस आप ही हमें बचा सकते हो, आपके सिवा दूसरा कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता। ये है ब्रजवासियों की विशेषता। वृंदावन में भी अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत का एकमात्र उद्देश्य है हमें ये बताना कि जब जीवन में समस्याएं आए तो किसके पास जाओ और कैसी चेतना के साथ जाओ। ब्रजवासियों ने देखा कि इतनी भयंकर समस्या है कि अब तो हमारी मृत्यु होने वाली है, कोई नहीं बचा सकता, केवल गोपाल हमारी रक्षा कर सकते हैं। हे कृष्ण बचाओ, हमको बचाओ। किसी भी क्षण जीवन में समस्याओं की वर्षा हो सकती है। हो सकता है ऐसी वर्षा हो कि हम पूरी तरह भ्रमित हो जाएं, हमारे पैर के नीचे से धरती खिसक जाए। ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। और व्रज में उस समय जब इंद्रदेव ने आक्रमण किया तो ऐसी ही भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ा व्रजवासियों को। तो भागवतम में बताते हैं, समाशिता ये पद पल्लवा प्लवम महत्पुदम पण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यत्पि पदम नतेशाम। भौतिक जगत इतना खतरनाक है कि किसी भी क्षण कोई भी दुर्घटना घट सकती है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाए, हमारे किसी निकट के संबंधी का स्वास्थ्य बिगड़ जाए, घर में किसी की मृत्यु हो जाए, हमारी मृत्यु हो जाए, धन संपत्ति हमसे दूर चली जाए, कुछ भी हो सकता है। पदम पदम यत विपदम न तेषाम। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। तो सारे ब्रजवासी अपने हाथ को जोड़कर कृष्ण के पास गए, कृष्ण हमें बचाओ, कृष्ण हमें बचाओ। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चलो मैं आपकी रक्षा करता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण के आए, गोवर्धन पर्वत के निकट आकर उन्होंने बड़े प्रेम से बिना किसी कष्ट के गोवर्धन पर्वत को अपनी बाएं हाथ की छोटी उंगली में इस तरह उठा लिया जैसे कोई छोटा बच्चा कुकुर मुत्ते को अपने हाथ में उठा लेता है बिना किसी चेष्टा के। बोले गिरिराज महाराज की, गोवर्धन धारी भगवान श्री कृष्ण की। इतने प्रेम से भगवान श्री कृष्ण उसे उठा लिए और सारे ब्रजवासियों को कहने लगे, आ जाओ, चिंता मत करो, सभी अपने गायों को लेकर, परिवार के सभी सदस्यों को लेकर इस गोवर्धन की छत्र छाया में आ जाओ, आपको कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये वर्षा होती रहे होती रहे, लेकिन इंद्रदेव आपको कुछ नहीं कर सकते। और उन्होंने ब्रजवासियों से कहा कि देखिए ब्रजवासी, आप सभी चिंता मत कीजिए, ये मत सोचिए कि इतना विशाल पर्वत है, मैंने अपनी बाएं हाथ की छोटी उंगली में उठाई है, गिर जाएगी अथवा नहीं, इसके विषय में चिंता मत कीजिए, आप आ जाइए। सारे ब्रजवासी अपने सारे गायों को लेकर, परिवार के सभी सदस्यों को लेकर तत्क्षण गोवर्धन के नीचे आ गए, क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण भगवान के चरण कमलों में इस तरह का विश्वास था, शत प्रतिशत विश्वास, इतनी श्रद्धा थी। मन में एक बार भी संशय नहीं आया कि कहीं ये पर्वत लुढ़क गया तो क्या होगा। अचानक भगवान को कभी छींक आ गई, कुछ हो गया, ध्यान भटक गया, खड़े खड़े सो गए तो क्या होगा, चलो बाहर ही रहते हैं, कम से कम पानी में बचने का प्रयास करते हैं। नहीं, कृष्ण ने कहा, आ जाओ, चिंता मत करो, मैं आपको वचन देता हूं। तो कृष्ण के वचनों पर जिसे पूर्ण श्रद्धा हो वो है ब्रजवासी, अर्थात वो है भगवान श्री कृष्ण का असली भक्त। इसीलिए भगवान गीता और भागवत में कितने ही स्थानों पर कहते हैं मा शुच। वो जानते हैं कि कलयुग में और विशेष रूप से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में संशय होता है। कृष्ण ने इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कह दी, लेकिन क्या भरोसा समय आने पर काम करेगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं। क्योंकि यहां पर कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हैं तो साथ मिलता है वारंटी कार्ड, जो अक्सर काम नहीं करता तो हमारी श्रद्धा कम हो जाती है। वारंटी कार्ड लेके जा तो बोलते, देखो हमने गारंटी नहीं दिया था, ये वारंटी था, दोनों में अंतर है, इसलिए आप जाओ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब कोई वचन दें तो वो उसे पूरा करते हैं। तो कृष्ण भगवान ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली में उठा ली, लेकिन भगवान तो आनंद में थे, क्योंकि उनको एक मौका मिला सारे ब्रजवासियों के साथ एक साथ संग करने का। क्योंकि हर रोज तो प्रत्येक ब्रजवासी अपने अपने नित्य काम में लगे रहते थे, कृष्ण को निरंतर दर्शन नहीं ले पाते थे। ये एक बहुत सुंदर अवसर मिला कि कृष्ण के निकट आ सकें और सारे ब्रजवासी आपस में एक दूसरे का संग कर सकें। तो भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक ब्रजवासी को देख रहे थे और उन्हें आनंद दे रहे थे, और जितने ब्रजवासी वहां खड़े थे वो भी भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मुख कमल को देखकर बहुत आनंद ले रहे थे। मुखेन लोकार्ति हरस्मितेन परिस्फुरत कुंडल मंडितेन। भगवान श्री कृष्ण का मुख कमल इतना सुंदर है कि उनकी सुंदर मुस्कान को देखकर भक्तों के हृदय के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मुखेन लोकार्ति हर, केवल अपनी मुस्कान से कृष्ण भगवान हमारे सारे दुखों को हर लेते हैं। तो सारे ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को देख रहे थे, तभी जो वहां वृद्ध पुरुष थे वो भी वहां भगवान श्री कृष्ण के प्रति बड़े कृतज्ञ थे, और भगवान श्री कृष्ण देखा कि गोपियां भी आई हैं, और कृष्ण भगवान जो कि गोपियों से बहुत प्रेम करते हैं गोपियों के सौंदर्य को देखने लगे, और जब गोपियों के सौंदर्य को देखने लगे और सारे ब्रजवासियों के प्रेम को देखने लगे तो भगवान श्री कृष्ण प्रेम से कुछ विचलित हो गए, और जब भगवान श्री कृष्ण प्रेम से विचलित हुए तो उनका हाथ कांपने लगा, बायां हाथ। जब उनका हाथ कांपने लगा तो गोवर्धन पर्वत जिसको वो धारण किए थे डगमगाने लगा, तो जितने वहां वृद्ध लोग थे उन्हें लगा कि शायद गोपाल थक गए हैं, तो चलो अपने हाथ में जो डंडे हैं वॉकिंग स्टिक है उसे उठाकर वो गोवर्धन पर रखने लगे, चलो हम सब मिलकर गोपाल की मदद करते हैं, शायद ये थक गए हैं। अब बलराम जी खड़े थे, बलराम जी ने सोचा कि ये कैसे लोग हैं, इनको गोपाल की शक्तियों का कोई ज्ञान ही नहीं, अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड को जो धारण करता है वो क्या एक छोटे से पर्वत को धारण नहीं कर सकता। और बलराम जी हंसने लगे इसे देख के कि कैसे मूर्ख हैं, अपने छोटे छोटे वॉकिंग स्टिक को लेकर वो ऐसे लगाए हैं। कृष्ण ने बलराम को मुस्कुराते हुए देखा और कृष्ण को लगा कि शायद बलराम जी ने मेरी नजरों को देख लिया कि मैं गोपियों को देख रहा हूं। तो कृष्ण अपने बड़े भाई की मुस्कान को देखकर उनको लगा कि शायद ये मेरे हृदय की बात जान गए और गोपाल शर्मा आ गए। तो ये दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा था जिसके विषय में श्री रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। बोले गोवर्धन नारी की। तो इस तरह की लीलाएं 7 दिन 7 रात तक हो रही थीं। वहां पर उन्होंने कोई प्रसाद की व्यवस्था नहीं की थी, ब्रजवासियों ने पूछा नहीं गोपाल अभी एक पूरा दिन हो चला अब प्रसाद की क्या व्यवस्था है, आप तो खड़े हो लेकर लेकिन हमारी भी सोचो नहीं। सब भगवान श्री कृष्ण के मुख कमलों को देखकर पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। तो इसे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति श्रद्धा और असीम भक्ति, और केवल उस भक्ति मार्ग से, उस भक्ति मात्र से ही सारी भूख और प्यास मिट जाती है। उस समय गोवर्धन के ऊपर क्या बीत रही थी, ब्रजवासी तो गोवर्धन के नीचे थे इसलिए सुरक्षित थे, लेकिन बेचारे गोवर्धन के ऊपर इंद्रदेव अपना पूरे कोप का प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसा भयंकर वज्रपात हो रहा था कि गोवर्धन के प्रत्येक पत्थर को चूर चूर कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन को धारण किए थे, अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली में गोवर्धन के ऊपर इतनी भयंकर वर्षा और वज्रपात हो रहा था। सोचिए वज्रपात क्या होता है, वज्रपात अर्थात लाइटनिंग कितना वोल्टेज होता है, एक आदमी पर गिरे तो तत्क्षण वो मर जाए, मृत्यु हो जाए। तो गोवर्धन पर पता नहीं कितनी देर तक कितने दिनों तक लगातार वज्रपात हो रहा था, गोवर्धन के पूरे शरीर पर इतनी पीड़ा हो रही थी। लेकिन क्या गोवर्धन ने एक क्षण के लिए भी ये विचार किया कि अरे इतनी समस्या आ गई, पता नहीं इंद्रदेव कब ये बंद करेंगे, और कृष्ण तो बड़े मजे में है हमें ऊपर उठा लिए और सारी समस्या हम पर आ गई। नहीं, गोवर्धन ये सोच रहे थे कि भगवान कितने कृपालु हैं कि कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली को मेरे शरीर से स्पर्श किया है। बाएं हाथ की छोटी उंगली, बस इतना सा ही स्पर्श भगवान श्री कृष्ण के साथ था, लेकिन उस स्पर्श से गोवर्धन इतने संतुष्ट थे कि उनके ऊपर चाहे कितनी भी समस्याएं आ रही थीं, उन समस्याओं का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं, विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगते हैं तो ऐसी सेवा के फल स्वरूप हमारे हृदय में एक ऊंचे स्वाद की वृद्धि होती है, और तब जब हमारी सेवा में रुकावटें भी आए, समस्याएं भी आए, मन विचलित हो, आज दैविक आज भौतिक आध्यात्मिक क्लेशों का हम पर आक्रमण हो, लेकिन भक्त एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं कोसता, क्योंकि वो जानता है भगवान कितने कृपालु हैं। जब हृदय में भगवान के लिए इतना प्रेम होता है और भक्ति का इतना आनंद होता है, तब हमारे जीवन में आती हुई समस्याओं को हम देखते नहीं। तो गोवर्धन के जीवन में इतनी समस्याएं आ रही थीं, लेकिन उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि अब मैं इस सेवा को त्याग दूं। नहीं, ये तो सेवा में अनेक बाधाएं आएंगी ही, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या फल मिल रहा है? इसके बदले में श्री कृष्ण के हाथ का स्पर्श। इसके सामने समस्याएं क्या हैं? समस्याएं तुच्छ हैं। तो वही भगवान श्री कृष्ण के बाएं हाथ की छोटी उंगली का स्पर्श हमें इस गुरु शिष्य परंपरा के ज्ञान के रूप में प्राप्त हो रहा है, और हरि कथा के रूप में प्राप्त हो रहा है, हरि कीर्तन के रूप में प्राप्त हो रहा है, हरि सेवा के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो भक्त को ये सोचना चाहिए कि ये समस्याएं जो भक्ति मार्ग में मेरी आ रही हैं, भगवान श्री कृष्ण के कृपा के आगे क्या है? वो तो कुछ भी नहीं। इसीलिए भक्त अपने हृदय में बहुत कृतज्ञता भगवान श्री कृष्ण के प्रति व्यक्त करता है। तो कहा जाता है कि एक बार एक व्यक्ति एक स्त्री से प्रेम करने लगे। ये कथा मैंने राधानाथ महाराज से सुनी थी बहुत साल पहले कुरुक्षेत्र में। तो वो बेरोजगार थे, कोई नौकरी नहीं थी, लेकिन उस युवती से प्रेम हो गया तो कहने लगे हम इससे विवाह करेंगे। तो गए उनके पिता के पास और पिता को जाकर कहने लगे कि हम आपकी कन्या से, पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। तो पिता ने कहा कि बेटे तुम क्या नौकरी करते हो? उन्होंने कहा मैं तो बेरोजगार हूं। कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे आने पूछने की? आप मेरी पुत्री को किस तरह देखभाल करोगे? यहां से निकल जाओ, भाग जाओ यहां से। बेचारा व्यक्ति रोता हुआ चला गया, और जब वो हताश बैठा हुआ था, चेहरा उतरा हुआ था, तो उसका एक दूसरा मित्र आया। मित्र ने पूछा, क्यों दोस्त तुम बहुत दुखी लगते हो, बात क्या है? देखो एक युवती से प्रेम हो गया, लेकिन क्योंकि मैं बेरोजगार हूं, कोई नौकरी नहीं है, इसलिए उसके पिता ने मुझे भगा दिया। बोले बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अभी करता हूं। बोला अच्छा क्या करोगे? वो चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तो उनके मित्र उस युवती के पिता से मिलने गए, और पिता जब आए तो कहने लगे कि देखिए मैं आपके सामने एक प्रस्ताव लेके आया हूं। तो पिता ने कहा क्या प्रस्ताव है बताओ? तो उनके मित्र कहने लगे हम आपको 2 करोड़ रुपए देंगे। तो पिता ने कहा, क्यों भाई पागल हो गए हो क्या, ऐसे क्यों दोगे? पर नहीं, इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? आप अपनी बाई आंख मुझे दे दो, इसके बदले में आपको 2 करोड़ रुपए मैं दूंगा। पिता जोर जोर से चिल्लाने लगे नौकरों को, अरे भाई कोई पागल आ गया, पकड़ के फेंको बाहर, मेरी आंख निकालना चाहता है। नहीं नहीं, मैं आपको पैसे दे रहा हूं, 2 करोड़। अच्छा, आप 2 करोड़ से संतुष्ट नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको 4 करोड़ देता हूं, दोनों आंखें दे दो। पिताजी घबरा कर अंदर भाग गए और अपने आप को बंद कर लिया और अंदर से चिल्लाने लगे, भाग जाओ यहां से, पता नहीं कौन हो, किस पागलखाने से भाग कर आए हो। कहा, नहीं, मैं आपको करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हूं, आपकी समस्या क्या है, चिंता मत कीजिए, मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। कहने लगे, नहीं, भाग जाओ यहां से, मेरे आंखें नहीं मिलने वाली, आंख दे दूंगा तो देखूंगा कैसे। तब वो व्यक्ति कहने लगे, देखिए कुछ समय पहले एक नवयुवक आया था आपसे मिलने, आपको स्मरण है? उसका हाँ स्मरण है। हाँ, वो बेरोजगार था, जानता हूं, मेरी पुत्री से विवाह करना चाहता था, भगा दिया था मैंने उसको। हाँ, लेकिन जानते हो उसके पास कम से कम 4 करोड़ रुपए हैं। पिताजी तुरंत कमरा खोलकर बाहर आए, क्या बात करते हो, 4 करोड़ रुपए, करोड़पति है, पहले क्यों नहीं बताया उसने मुझे, वो तो कहता था बेरोजगार है, 4 करोड़ रुपए कैसे हैं उसके पास? तो मित्र ने कहा, देखिए उसके पास 2 आंखें थी, देखा था आपने, हाँ 2 आंखें थी, 4 करोड़ रुपए मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, आप मुझे 2 आंखें नहीं दे रहे हो, अर्थात आपकी ये 2 आंखों का मूल्य 4 करोड़ से भी अधिक है कि नहीं? हाँ ये बात तो सही है। तो उस व्यक्ति के 2 आंखें थीं और कार्यरत थीं, इसीलिए कम से कम 4 करोड़ का स्वामी तो है ही वो। और जहां तक नौकरी का प्रश्न उठता है, वो तो मिलता रहेगा, हाथ है, पैर है, बाकी सारे अंग कार्यरत हैं, तो मिल जाएगा, चिंता की क्या बात है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो बताना चाहते थे कि जो कुछ भी भगवान ने दिया है, क्या उसके प्रति हम भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं? भगवान ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है जो पूर्ण रूप से कार्यरत है, 2 आंखें, 2 हाथ, शरीर के सारे अंग, क्या भगवान के प्रति हम कृतज्ञ हैं? क्या भगवान को धन्यवाद देते हैं कि भगवान आप कितने कृपालु हो, आपने हमें सब कुछ दिया है? तो भगवान ने जब हमें सब कुछ दिया है उनकी सेवा के लिए, तो कितने उत्साह के साथ उनकी सेवा करनी चाहिए। और ऐसी सेवा में कोई बाधाएं आए, वो तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा के सामने तुच्छ हैं। इस तरह भक्त अपने हृदय में कृतज्ञता की भावना को उत्पन्न करता है। तो कहा जाता है कि भार 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रेम का भार और एक होता है पशु का भार। जब गधा अपने पीठ पर बोझा ढोता है, उसे कहते हैं पशु का भार। लेकिन माँ अपने गोद में किसी पुत्र को लेती है, तो माँ ये नहीं सोचती, अरे इतना मोटा पुत्र पैदा हुआ, मेरा पीठ दुखा जा मेरा पीठ दुखा जा रहा है, पता नहीं मुझे बैक पेन है, पता नहीं ये कब अपना वजन कम करेगा। नहीं, माँ ऐसा नहीं सोचती, भले ही उसका बहुत वजन हो, माँ के हृदय में प्रेम है, इसे कहते हैं प्रेम का भार। रात को माँ सोती रहती है, बच्चा उठकर रोता है, तो माँ ये नहीं सोचती फिर चालू हो गया, कब सुधरेगा पता नहीं। और पति से ये नहीं कहती, ये बच्चा बहुत रोता है, रोज रोज बच्चे को चेंज कर देते हैं अपन, दूसरा बच्चा ले आते हैं जो रोएगा नहीं। ऐसा हो सकता है? ये नौकरी के समान नहीं है, नौकरी में बॉस चिल्लाए तो नौकरी बदल सकते हैं, लेकिन घर में बच्चा रोए तो बदल नहीं सकते। तो फिर भी उसे हम सहन करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम का भार है। चाहे वो कपड़ों को गंदा भी करे, फिर भी बच्चा तो बच्चा ही है, उसके प्रति प्रेम का जो संबंध होता है तो वो भार भार नहीं लगता। इसे कहते हैं प्रेम का भार। उसी प्रकार कोई बहुत ही धनी व्यक्ति हो, करोड़पति हो, उसके हाथ में 1 करोड़ रुपए की थैली हो, सूटकेस हो, तो 1 करोड़ रुपए यदि 5-5 रुपए के सिक्के के रूप में लाए तो कितना वजन होगा, सोचिए। 5 रुपए का सिक्का आता है और 1 करोड़ रुपए 5-5 रुपए के सिक्के के रूप में हो तो कितना किलो वजन हो जाएगा। लेकिन किसी व्यक्ति को मौका मिले तो मना करेगा क्या उसे उठाने? यदि किसी धनी व्यक्ति को कहा जाए ये तुम्हारा धन है इसे उठाकर ले जाओ, उठाने का प्रयास करके वो कहेगा बहुत भारी है, इस धन को मैं यहीं छोड़ देता हूं, आप लोग मिल बांट के खा लो, ऐसा कहेगा? नहीं, वो भी एक भार है, लेकिन उस भार को उठाकर उसके पसीने छूटते हैं लेकिन फिर भी हृदय में आनंद है कि एक बार इसे जाकर बैंक में दे दूंगा तो उसके बाद मेरे अकाउंट में आ जाएगा। इसे कहते हैं धनी व्यक्ति का भार। वो भार भार नहीं लगता। कोई हमें पत्थर मारे तो हमारे शरीर से खून निकले और हमें बड़ा कष्ट होगा। कोई सोने के बिस्किट मारे तो क्या करेंगे? क्या गालियां देंगे? कहेंगे नहीं, मैं बहुत पापी हूं, मारो और मारो। इन पापों से मुक्त होने के लिए इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं, इतना नहीं और मारो और मारो, 84 लाख योनियों के पाप मुझे दूर करने हैं, बस 2-4 बिस्किट नहीं, कम से कम 100-200 मारो, चाहे जितना भी खून भी निकले। कहेंगे अरे खून का क्या है, डॉक्टर के पास जाकर ठीक कर लेंगे, ये बिस्किट जितने बटोरना है बटोरो, और बटोर कर उस भारी बिस्किट को लेकर जाएंगे चाहे पसीना भी निकले। तब हमें लगता नहीं कितनी बड़ी समस्या है, भगवान ने सोने को इतना भारी क्यों बनाया, ऐसा नहीं सोचते। वाह सोना, चाहे कितना भी भारी हो उठाओ, क्यों? एक भार है लेकिन वो भार आनंद देता है। उसी प्रकार